الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج هم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورة القارعة، سورة التکاثر اور سورة العصر پڑھیں گے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورة القارعہ. اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت میں القارعہ سے لیا گیا. یہ مکہ میں نازل ہوئی اور قیامت کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے. جب ہم نے پچھلی سورت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 9 میں، کیا وہ نہیں جانتا کہ جو قبروں میں ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے اور یہ قیامت کے دن ہوگا؟ اب اگلی سورت میں قیامت کا ذکر آ گیا. اسی طرح پچھلی سورت میں آپ نے دیکھا کہ اعمال کو دکھائے جانے کی بات ہے. جو سورت زلزال گزری اس میں اعمال کو دیکھنے کی بات ہے، اس صورت میں اعمال کے وزن کی بات ہے. یاد رکھیے گا، سورت الزلزال، عادیات، القارعہ اور التکاثر، یہ سمجھ لیں کہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. سورت الزلزال اور سورت القارعہ کا ایک ہی مضمون ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہے، اور سورت العادیات میں انسان کے طرز عمل کا ذکر ہے کہ جو انسان کی بے وفائی، جو انسان کی نافرمانی، جو انسان کی اللہ تعالیٰ کی حق ادا نہ کرنا اور ناشکری پہ اڑے رہنا، اس کا ذکر ہے. اور اسی طرح سورت التکاثر میں بھی انسان کے ایٹیٹیوڈ کا ذکر ہے کہ اس کا کیا رویہ ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ سورت الزلزال اور قارعہ ایک ہی مضمون، اسی طرح عادیات اور تکاثر میں انسان کے رویے کا، اس کے طرز عمل کا ذکر ہے. اور سورت العادیات میں ہم نے پڑھا، پہلے سورت زلزال میں پڑھا کہ اعمال دکھائے جائیں گے، عادیات میں پڑھا کہ نیتیں بھی نکالی جائیں گی، صرف ظاہری اعمال نہیں، اس کے بعد نیتیں بھی نکالی جائیں گی. وحصل ما فی الصدور. اور یہاں پر اس سورت میں اسی سیکونس کو آگے لے کر چلیں کہ اب اعمال کو تولا جائے گا اور اس کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو دیکھتے ہیں اس سورت کو، سورت القارعہ، اس کے پہلے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں جو مشکل الفاظ ہیں. القارعہ، کھڑکھڑانے والی، قارعہ سے کسی چیز کا دوسری چیز کے اوپر زور سے دے مارا جانا، اس کو القارعہ قرعہ کہتے ہیں، اسی سے القارعہ ہے، ہٹ کرنا. یعنی جیسے آپ کیل دیوار میں ٹھونکتے ہیں اور ایسی آواز کے لیے آتا ہے جس سے دل دہل جائے. پھر آپ دیکھیں آگے، کل فراش کا معنی طرح، جیسے فراش ٹڈیوں کو کہتے ہیں، موتس، المبثوث بکھرے ہوئے، ڈسپرسڈ، تکونو ہوں گے، کل اہن مانند یا طرح اہن روئی کے، اور ایسی وول کو بھی کہتے ہیں جو کہ یعنی اس کے ریشے الگ الگ ہوئے ہوں، اور رنگین روئی کے لیے بھی آتا ہے. منفوش، نون فاشین، دھنی ہوئی. تقلت، بھاری ہوئے. موازین، मीजान की भी जमा हो सकती है और मौजून की भी, पलड़े भी या जो कुछ मीजान के अंदर तोला जाए। ऐशा, ऐश में, रौदिया या जिंदगी में होगा, रौदिया पसंदीदा या रजा वाली, जैसे आपको पता है कि राजी होना क्या होता है। खफत, हल्के हुए, खफीफ से। फ तो उम्मू, माँ हूँ उसकी, हाविया ये जहन्नुम का नाम है। माँ वो, हिया क्या है, नार आग, हामिया हमीमा पहले पढ़ चुके हैं, खोलता हुआ। इस तरह यहां पे आग है जो भड़कती भी। तो ये थे मुश्किल अल्फाज इस सूरत के। देखते हैं सूरत को, सूरतुल कारिया, तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिया, क़ारा से ये लफ्ज़ बना और कयामत के नामों में से है। जैसे कि आप पहले कयामत के दूसरे नाम भी जो एक लफ्ज़ पे मुश्तमिल हैं वो देख चुके हैं। इसी बारे में आप तौमा, सौखा, गौशिया ये सब देख चुके हैं। इससे पहले आप आजिफा, हाक़ा, वाक़िया ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कौरिया ऐसी आवाज को कहते हैं जिससे दिल दहल जाए। अगर किसी आवाज से दिल ना दहले तो वो कौरिया नहीं कहलाती। अरबों में कहा जाता था फुलान नजलत बिहिल कौरिया, फुलां के ऊपर कौरिया टूट पड़ी, यानी बहुत बड़ी मुसीबत के लिए कहा जाता था। वो जब अरब लोग किसी चीज को बहुत बड़ी आफत समझते थे ना, तो उसको अलकारिया के लफ्ज़ से ताबीर करते थे। तो खड़खड़ाने वाली, यानी कि बहुत शदीद ऐसी आवाज जिससे इंसान घबरा जाए। पहले वक्त के अंदर ये भी होता था कि रात को कोई आके अगर दस्तक देता था तो कहते थे कौरा अलबाब, दरवाजा खटखटाया गया, और वो अचानक होता था और इंसान घबरा जाता है। तो इसी वजह से बड़े हादसे के लिए, बड़ी मुसीबत के लिए, अचानक आने वाली के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो असल में क्या है कि जब कयामत के दिन सूर फूंका जाएगा तो इतनी जोर की चिंघाड़ होगी जिससे लोगों के दिल दहल जाएंगे और सोचेंगे, फिर वो ही आवाज होगी ना कि सूरज, चांद, सितारे, पहाड़ सब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो सोचें कि वो कितनी गरजदार आवाज होगी, वो कैसी होगी, वो वाकई कौरिया उसको कह सकते हैं। इस वजह से भी इसका नाम अलकौरिया है कि बहुत ऐसी चिंघाड़, ऐसी आवाज जिससे हर चीज खत्म हो जाए, सितारे झड़ रहे हैं, जिससे सूरज चांद बेनूर हो रहे हैं, जिससे आसमान फटके टुकड़े टुकड़े हो रहा है, जिससे पहाड़ जो हैं वो धुनकी हुई ऊन की तरह रेजा रेजा हो रहे हैं। तो फिर इंसानों की खौफ और दहशत का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। तो इसलिए इसको अलकारिया कहा गया। मलकारिया क्या है वो, अलकारिया क्या है वो, अजीम, खड़खड़ा देने वाली। और ये लफ्ज़ 3 जगह यहां आया है और 2 जगह कुरान करीम में दूसरी जगहों पे आया है। एक तो हम सूरह हाका में भी देख चुके हैं इसको। तो वो क्या है जो अजीम हादसा है, खड़खड़ा देने वाली है। वह मां अदरा का, और क्या चीज बताए तुझको कि वो खड़खड़ा देने वाली क्या है। अब मैं आपको जैसे पहले भी बयान कर चुकी हूं कि अदरा का और युदरी का ये 2 लफ्ज आते हैं। क्या बताए तुझको, क्या चीज समझाए तुझको। और युदरी का जो होता है ना वो मुस्तकबिल के लिए होता है, और अदरा का माजी के लिए। और मैंने आपको क्या बताया था, जब अदरा का आएगा तो उसके बाद कोई ना कोई क्लू आएगा। समझ तो नहीं आप पूरी तरह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी बात आएगी जो आपको समझा दे। लेकिन जब युदरी का आएगा तो फिर आगे बात आप नहीं समझ सकते, कोई उसका आगे क्लू नहीं आपको मिलेगा। तो तुम कैसे जान सकते हो, तुम कभी जान ही नहीं सकते कि वो क्या है। तो वाकई इंसान उस चीज को कभी भी नहीं समझ सकता कि वो क्या आफत होगी। हम तो छोटे से बिजली कड़क के या बादल गरजे तो उस वक्त ही हम डर जाते हैं। वो क्या होगा जो नफखा सूर होगा, जिससे लोगों के अंदर एक अफरा तफरी फैल जाएगी, जिससे हशरात जो वहशी जानवर हैं वो भी इंसानों की तरफ दौड़ पड़ेंगे, जिससे आसमान फटने लगेगा, जिससे समंदर भड़क उठेंगे, जिससे कायनात में हर जगह एक यानी जैसे बड़ी कोई हादसा हो गया, इस तरह से हर जगह पर एक शिद्दत और एक तकलीफ और एक मुसीबत की कैफियत होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पहला सूर तो जजा फजा का होगा, दूसरा मौत का, फिर दोबारा उठने का। अस्तग़फिरुल्लाह। तो यौमा यकूनुन नास, जिस दिन होंगे लोग कैसे, कल फराश टिड्डियों की तरह, अल मबसूस जो बिखरी हुई, यानी ऐसे उन लोगों की हालत होगी जैसे बिखरी हुई टिड्डियां। टिड्डियों को आपने देखा है कि कभी वो, जिनको आप पतंगे कहते हैं, पतंगे कभी आपने बिखरे हुए देखे हैं कि किस तरह से वो होते हैं? यानी वो जो शम्मा होती है उसकी तरफ ऐसे बढ़ रहे होते हैं और मुंतशिर होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे मुंतशिर का ही समझ ले माना, बिखरे हुए होते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं, और ऐसे जैसे एक पैनिक मची हुई है, उनको देख के कोई एक डिसिप्लिन का सा वो नहीं पता चलता कि वो कोई एक लाइन में जा रहे, जैसे परिंदे वगैरह होते हैं एक लाइन में उड़ रहे हैं और बड़े डिसिप्लिन है, लेकिन ये पतंगों का ऐसा नहीं होता। ये ना तो एक ग्रुप में ना किसी एक सम्त में होते हैं, बल्कि उल्टे सीधे इधर उधर हो रहे होते हैं, एक जैसे लगता है कंफ्यूजन की सूरत हाल है हैजर्ड से होते हैं। तो जब इंसान भी उठेंगे अपनी कब्रों से तो वो भी ऐसे होंगे, जब पहला सूर फूंका जाएगा तब भी वो ऐसे होंगे कि भाग रहे होंगे और किसी को किसी का हाल अहवाल नहीं पता होगा, और एक कंफ्यूजन और एक लोगों के अंदर पैनिक की कैफियत होगी। अब देखें यहाँ पे फराश से, पतंगों से इंसान को तशबीह दी गई भी है, जैसे कि बिखरे हुए पतंगे होते हैं, हालांकि पतंगे तो एक बिल्कुल ही ऐसी चीज़ है जिसको ना कोई अक्ल है ना समझ है। इंसानों के अंदर तो बड़ी अक्ल समझ इंटेलेक्ट है, लेकिन सोचें कि इंसानों का वो हाल होगा जैसे पतंगों का होता है, इतनी ज्यादा वो यानी हवास बाखता होंगे, वो समझ नहीं आ रही होगी उनको। सूरतुल कमर में जराद मुंतशिर का भी लफ्ज आया, जराद जो टिड्डी दल जिसको कहते हैं, वो एक सीध में चलते हैं, जैसे आप देखें किसी जगह हमला करते हैं तो टिड्डी दल का हमला जो होता है वो फसलों के ऊपर होता है, और वो एक बड़े उसमें आते हैं, ग्रुप्स में आते हैं और एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। वो उस वक्त होगा जिस वक्त की एक आवाज देने वाला आवाज देगा और लोग कब्रों से उठ के उस तरफ भागेंगे। तो किसी जगह ये है और किसी जगह वो है, एक जगह पे ऐसा होगा कि लोग कंफ्यूजन में इधर उधर भाग रहे हैं और किसी को किसी का होश नहीं, दूसरी जगह ऐसा होगा कि जरादु मुंतशिर हैं कि एक ही डायरेक्शन में भागे चले जा रहे हैं। वह तकूनुल जिबाल, और पहाड़ होंगे ऐसे कल एहनिल मनफूश, रंगीन रुई की तरह जो धुनकी भी हो। धुनकी भी रुई कैसी होती है कि जैसे कि ढीली हुई हुई हो, अलग अलग हुई हुई, जिसके स्ट्रैंड्स एक नहीं रहते के सेपरेट सेपरेट होते हैं। इससे उस दिन की शिद्दत का अंदाजा कर सकते हैं कि पहाड़ जो इस जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा मजबूत मखलूक है, कि जलजले भी आते हैं तो पहाड़ नहीं हिलते, आप देखें बिल्डिंगें गिर जाती हैं लेकिन पहाड़ों को कुछ नहीं होता। इसी तरह और भी कोई भी आफत आए, कोई तूफान आए, फ्लड आए, हरिकेन्स आए, कुछ भी हो, पहाड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दिन पहाड़ों को भी हिला दे, इतने मजबूत पहाड़ जो गड़े में जमीन के अंदर, उनको भी हिला दे तो क्या हाल होगा। तो तीन बातें पहाड़ों के बारे में कुरान करीम में कही गई हैं। एक जगह पे ये कहा गया कि ये गिर जाएंगे, जमीन बोस हो जाएंगे, जैसे मलबा होता है बिल्कुल उस तरह ये गिर के मलबे की तरह हो जाएंगे। फिर उड़ा के, जैसे ऊन के गाले होते उस तरह से उड़ने लगेंगे, यानी बिल्कुल बेवजन हो जाएंगे, कोई वजन नहीं है इनका। वही जो पहाड़ इतना मजबूत था, चट्टानें थी, आप चट्टानों को तोड़ना भी चाहे ना तो वो टूटती नहीं है। वो रुई के गालों की तरह उड़ रही हैं, तो सोचें कि उसकी क्या हैसियत रह गई। और उसके बाद कहा गया कि उसके बाद तीसरा मरहला ये कि शराब की तरह हो जाएंगे, जैसे शराब होता है, बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब बताया गया कि ये वो वक्त है और ये वो दिन है जिससे अल्लाह ताला तुम्हें खबरदार कर रहा है कि ये वो दिन है। फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु, तो रहा वो मन जिसका थकुलत भारी हो गया, सकील से भारी हो गया। मवाज़ीन, मवाज़ीन की दो मुरादें हैं, एक मीज़ान की जमा है। मीज़ान तो वो आप मीज़ान समझते हैं ना, मीज़ान क्या होता है, तराजू, उसकी जमा। तो उसको तो आपको समझ आ गया कि एक में नेकियां रखी जाएंगी, एक में बदियां रखी जाएंगी। और दूसरा मौजून की जमा, मौजून उस चीज को कहते हैं जो कि तोली जाती है। वो चीज अगर भारी हुई, जैसे हमने पहले पढ़ा कि इंसान के जाहरी आमाल ही नहीं बल्कि पिछली सूरत में हम देख चुके हैं कि उसकी नियतें भी निकाली जाएंगी। तो सिर्फ जाहिर जाहिर अगर खूबसूरत है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि नियत के अंदर इखलास ना हो, जब तक कि नियत भी वैसी ना हो कि जो अल्लाह ताला की रजा के लिए सिर्फ काम किया जा रहा है, अपनी चौधराहटों के लिए नहीं, खुद बड़ा बनने के लिए नहीं, शोहरतों के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, खुद नेक कहलाने के लिए नहीं, खुद पावरफुल बनने के लिए नहीं, अपनी कुर्सी के लिए नहीं, जाह के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के रास्ते में उसकी खुशनुदी के लिए, उसको राजी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसकी नजरों में जचने के लिए जो काम किया जाएगा वो ही उस दिन भारी होगा। तो याद रखिए, कभी भी ये ना सोचे कि जाहरी आमाल तो बड़े खूबसूरत हैं, तो अब यही आमाल तो फिर तुल जाएंगे, तो मैं तो बहुत वजन होगा इन आमाल का। जब तक कि आप ये नहीं कर लेते कि उसके साथ साथ नियत भी उतनी खालिस हो कि नियतों में भी जरा रत्ती बराबर भी कोई किसी और का हिस्सा ना हो, क्योंकि जो अमल ऐसा हो कि अल्लाह की रजा के लिए भी किया गया है और किसी और के लिए भी किया गया, सर ये नहीं है कि सिर्फ किसी और के लिए किया गया, अल्लाह को राजी करने के लिए भी, लेकिन साथ साथ ये भी है कि चलो लोग भी तो चलो देख लेंगे ना, लोगों को भी पता चल जाएगा, लोग भी खुश हो जाएंगे, लोग भी मुझे कुछ समझेंगे। तो अल्लाह ताला इवन ऐसे अमल को भी कबूल नहीं करता, क्योंकि वो बड़ा गयूर है, वो उसको भी अपने शराकत दार के लिए दे देता है कि ये भी उसी के लिए जिसके लिए तुमने किया, यानी वो पूरा का पूरा उसको दे देता है। आपने तो हिस्सा अल्लाह का भी रखा और किसी और का भी थोड़ा सा रखा ना, लेकिन अल्लाह ताला पूरा का पूरा उसको दे देता, मुझे नहीं ये चाहिए। तो इसलिए जो मीज़ान में वज़नी अमल हैं वो ही होंगे जो वैसे भी नेक अमल है लेकिन उनमें नियतें भी खालिस हैं। इसी तरह जब मैंने आपको कहा कि वो चीज जो तोली जाएगी, तो चीजें क्या क्या तुलेंगी मीजान में, मौजून की जमा अगर हम करें ना, तो क्या क्या चीजें तुलेंगी, आमाल तुलेंगे, इंसान भी तुलेंगे और आमाल नामे भी तुलेंगे। ये सब हमें हदीस से पता चलता है, यानी आमाल के तुलने का तो आपको पता है, आमाल में कौन सा अमल सबसे ज्यादा वजनी होगा, सबसे ज्यादा वजनी, सबसे ज्यादा वजनी अमल इंसान का कलमा है। जो वो कलमा उसने पढ़ा, वो कलमा सबसे वजनी होगा। आपको हदीसे बताका का पता होगा कि जिसमें ये आता है कि अल्लाह ताला उस दिन जब अपनी अदालत कायम करेगा, तो एक आदमी को लाया जाएगा जिसके 99 स्क्रोल्स होंगे गुनाहों के, 99 रजिस्टर, और एक एक करके हर एक स्क्रोल खोला जाएगा तो इतनी दूर तक होगा जितनी हद्दे निगाह है। अल्लाह ताला उससे पूछेगा, क्या तुम इसमें से किसी अमल का इनकार करते हो? वो कहेगा, नहीं या अल्लाह। फिर अल्लाह ताला पूछेगा, क्या मेरे फरिश्तों ने कोई भी नाइंसाफी की है तुम्हारे अमाल लिखने में? वो कहेगा, नहीं या अल्लाह। अब वो समझ जाएगा कि अब मैंने नहीं बचना, इतने गुनाह और नेकी कोई नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे पास तुम्हारी एक नेकी मौजूद है। वो हैरान होगा, को कौन सी नेकी हो सकती? तो एक बिताका लाया जाएगा, यानी एक रुक्का जिसको कहें, एक छोटा सा नोट जिसको कहें, वो लाया जाएगा और उसके नेकियों के मीजान में रख दिया जाएगा, और नेकी का मीजान इतना भारी हो जाएगा कि 99 स्क्रोल्स जो थे वो ऊपर चले जाएंगे। और ये क्या है? ये कलमाए तैयबा है, इसका इतना वजन होगा उस दिन। तो इंसान के लिए सबसे भारी वजन कलमाए तौहीद है, यानी उसकी जो कलमाए शहादत उसने शहादत दी, अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मुहम्मद रसूल मुहम्मद अन अब्दुहु व रसूल, ये लिखा हुआ होगा उसके ऊपर। तो क्योंकि वो तो समझ रहा था इन रजिस्टरों के मुकाबले में इस बिताके की क्या हैसियत है, इसका क्या फायदा होगा। बिताका बा तो अलिफ कौफ और ताई मरबूता, ये लिख लिए हदीसे बिताका के नाम से मशहूर है। तो वो समझेगा इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला उस दिन किसी पे जुल्म नहीं करेगा। देखिए वो उसका ईमान कैसा होगा, उसका तौहीद उसके अंदर कैसी होगी। वाकई अल्लाह के नाम से भारी तो कोई चीज भी नहीं। तो वो इस तरह से इतना वजनी होगा। इसीलिए अपने अकीदे को खालिस करें, अकीदे को सीखें, अकीदे में जरा बराबर भी कहीं शिर्क ना हो, अकीदा बिल्कुल शफाफ होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। इंसान को पता भी नहीं चलता, चूंटी की भी जो चाल होती है उससे भी ज्यादा बारीक है शिर्क। इंसान शिर्क में मुब्तिला हो जाता है। तो इसकी तौहीद कितनी कामिल होगी, इतना ज्यादा वजनी ये अमल। और क्या क्या तोला जाएगा, एक राई के बराबर वजन के आमाल भी तोले जाएंगे, जर्रा जर्रा तोल दिया जाएगा। कोई भी एक चीज भी नहीं रहेगी कि इंसान ये सोचे, ओ फलां वक्त में तो मैंने मुस्कुरा के देखा था, वो भी तो सदका था, वो कहाँ गया। ऐसा नहीं होगा। हर हर अमल, हर हर आँख की जुम्बश, एक आपका सुबहान अल्लाह कहना, एक आपका अल्हम्दुलिल्लाह कहना, एक आपका बिस्मिल्लाह कहना, आज कितना आसान है, लेकिन आप नहीं जानते कि इसका वजन कितना ज्यादा होगा कयामत के दिन। ये इंसान आज इन नेकियों को तो कुछ समझता ही नहीं। वल वजनु यौम इदिनिल हक, वजन उस दिन बरहक होगा, बिल्कुल सही सूरह आराफ में है ना, बिल्कुल सही सही होगा। मन सकुलत मवाजीन फौलाए कौमुल मुफलिहून, जिसके पलड़े भारी हो गए, मतलब किसके मुकाबले में भारी हो गए, यानी गुनाहों के पलड़े के मुकाबले में भारी हो गए, फौलाए कौमुल मुफलिहून, मन खफत मवाजीन हो खसिर अनफुसा, उन्होंने खसारे में डाल दिया अपनी जानों को जिनके हल्के हो गए, यानी नेकियों के वो गुनाहों के मुकाबले में हल्के हो गए उस दिन उनके मवाजी, उनके पलड़े। तो उस दिन ये बहुत भारी अमल होगा। इसी तरह अच्छा अखलाक जो होगा वो बहुत भारी अमल होगा इसके बाद, क्योंकि अच्छे अखलाक वाला नमाज और रोजा रखने वाले के दर्जे को पहुंच जाएगा। यानी जो नफली नमाज पढ़ती हैं, नफली रोजे रखती हैं। अच्छा भला कितना भारी होगा। और इसी तरह जुबान से निकले हुए अल्फाज जो है ना, वो भी मीजान में तोले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई लफ्ज ऐसे ही छोड़ दिया जाए। अगर वो गुनाह का लफ्ज है, अल्लाह ताला की नापसंदीदगी का लफ्ज है, वो भी तोला जाएगा। अगर अल्लाह की रजा का वो लफ्ज है, वो भी तोला जाएगा। आपको नहीं पता सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह लाजीम, ये मीजान में कितने भारी तुलेंगे। ठीक है। और इसी तरह आपने किसी को माफ कर दिया मसलन, वो भी तोला जा रहा है। आपने कोई गुस्से में कोई बात कह दी है, वो भी तोली जा रही है। आपके पास एक सवारी है जो आप दीन के रास्ते में इस्तेमाल करते हैं, फी सबीलल्लाह इस्तेमाल करते हैं, वो सवारी भी तोली जाएगी। इसलिए कि देखें, वो घोड़े जो जिहाद के लिए परवरिश किए गए, वो भी तोले जाएंगे, तो फिर आपकी सवारियां नहीं तोली जाएंगी। और जब इंसानों को तोला जाएगा, तो ये नहीं कि जिसका वजन ज्यादा है तो उसका, यहाँ पे वजन ज्यादा है तो उसका मीजान में भी वजन ज्यादा होगा, नहीं। बल्कि एक आदमी इतना मोटा ताजा होगा, उसका वजन किया जाएगा, तो उसका वजन एक मच्छर के बराबर भी नहीं होगा। इतना ज्यादा मोटा ताजा आदमी था, लेकिन इतना भी नहीं होगा। तो इसलिए इंसानों के भी वजन होंगे। और जो काफरों के ढेरों नेक आमाल हैं, ढेरों नेक आमाल हैं, कोई अस्पताल बनाया, कोई रफाही काम किए, सोशल वर्क किए, कोई और किसी को पानी पिलाया, किसी के साथ भलाई की, अच्छे अखलाक के साथ पेश आए, लेकिन वो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होंगे। यह हदीस में आता है। कोई लोग ऐसे होंगे तहामा पहाड़ों के बराबर नेक आमाल लेकर आएंगे। तहामा पहाड़ इतना बड़ा पहाड़ है, उसके बराबर नेक आमाल लेकर आएंगे, लेकिन उस दिन वो उड़ा दिए जाएंगे ऐसे जैसे कि डस्ट होती है, देखने में इतने बड़े। आपने वो देखा है, वो जो कॉटन कैंडी होती है, लच्छा सा जिसको कहते हैं, वो होता है कितना बड़ा नजर आता है ना। आपने कभी उसका वजन किया है? कितना होगा? कुछ भी वजन नहीं। देखने में कितना बड़ा पिंक होता है और इतना खूबसूरत होता है, लेकिन उसका वजन कुछ भी नहीं है। तो ये ना समझें कि कोई बड़े बड़े नेक आमाल जो नजर आ रहे हैं, वो उतने ही वजनी भी होंगे, कोई पता नहीं है। इसलिए ये उड़ा दिए जाएंगे, क्योंकि ये वो बंदा था, तहामा पहाड़ के बराबर नेक आमाल लेकर आया। इतने ज्यादा इसके पास नेकियां थी, नमाजें थी, रोजे थे, अच्छा अखलाक था, लोगों के काम आना था, बहुत कुछ था। बड़ा मस्जिदों में आता जाता था, बस हर वक्त खिदमत खल्क में लगा, लेकिन तन्हाई में ऐसे काम करता था, अकेले में ऐसे काम करता था कि जो सख्त गुनाह के हैं, अल्लाह ताला उसकी नेकियों को ऐसे उड़ा देगा। तो अस्तग़फिरुल्लाह। तो उस दिन मन सकुलत मवाजीनू, जो जिसके पलड़े भारी हो गए, फहुआ फी आईशत रौदिया, तो वो जिंदगी में होगा पसंदीदा। अब यहाँ पे रौदिया से मुराद दो चीजें हैं, एक जिंदगी रौदिया है, जिंदगी जॉयफुल है, जिंदगी ही ऐसी है, यानी अल्लाह ताला ने उस जिंदगी को बनाया ही ऐसा है जो रौदिया है। तो उस जिंदगी में, यानी जो बात वही होती है जैसे अब मैंने आपको मवाजीन की दो बातें बताई, मतलब एक ही है, लेकिन यानी मुराद वो ले लें या वो ले लें, बात वही समझ आती है। चाहे पलड़े भारी हो गए, चाहे उसमें चीजें जाहिर है डालेंगे तो भारी होंगे, तो चाहे चीज भारी है। इसी तरह यहाँ पे जो जिंदगी रौदिया है, उसके अंदर रहने वाला राजी ही होगा, और दूसरा वो बंदा मर्दिया होगा, यानी वो बंदा इतना राजी होगा उस जिंदगी में, इतना खुश होगा उस जिंदगी में, कि वो कुछ और चीज नहीं चाहेगा। उसकी कोई ऐसी नहीं होगी कि ये मेरी तमन्ना थी ये पूरी ना हो सकी, ऐसा नहीं होगा, इतना खुश होगा। यानी बताया गया कि वो फिर ऐसी जिंदगी में होगा जो बहुत राजी हो जाने वाली जिंदगी है, यानी उसमें कोई कमी नहीं है। इंसान इस दुनिया में जितना कुछ भी कमा ले, जितना कुछ भी कमा ले, कितना ही आप किसी बड़े से बड़े बादशाह को भी देख लें, उसकी भी कोई तमन्ना होती है कि अच्छा अब मुझे ये मिल जाना चाहिए, ये मेरी अभी ख्वाहिश रह गई है, ये मुझे ऐसा चाहिए। कितना कुछ भी इस जिंदगी में पालो, लेकिन ये जिंदगी ईशत रौदिया नहीं बन सकती। इसमें कमी रहती ही रहती है। सिर्फ जन्नत वो जगह है जहां पे कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं होगा कि जिसमें इंसान खुश ना हो। हर वक्त खुशी होगी, हर वक्त। दुनिया में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचते हैं ना कि तायुशात जिसको मिल जाए, जिसको बहुत पैसा, इज्जत, शोहरत, सब कुछ मिल गया, तो बस वो उसकी बस अब तो क्या है, इसकी तो जिंदगी खुशियों भरी है। आप देखें तो सही, जाके लोगों को उनकी जिंदगियां जरा खोल के देखें तो आपको पता चले, जरा खोज के देखें तो पता चले कि अंदर कितने गम हैं, कितने डिप्रेशंस हैं, कितनी एंग्जाइटीज हैं, कितनी फ्रस्ट्रेशंस हैं। रातों को नींदें नहीं आती, नरम बिस्तर हैं, एसी हैं, आगे पीछे नौकर चौकर हैं, बॉडी गार्ड्स हैं, फिर भी नींद नहीं आती, फिर भी परेशानियां, फिर भी करवटें बदलते हैं। तो क्या आप कहते हैं कि इस दुनिया में कैसे, हम तो यही सोचते हैं ना, ये कामयाबी है, कैसे मिल सकती है कामयाबी यहाँ पे, जिनको हम कामयाब समझते हैं इस दुनिया में, उनका भी हाल ऐसा देखा है। और जो जिसके पास पैसा नहीं, वो अपने रोने रो रहा है, और रात को गर्मी में, मच्छरों में, करवटें बदल रहा है, वो भी बेचैन है। तो यहाँ पे तो कंप्लीशन है ही नहीं, यहाँ पे तो वो खुशी है ही नहीं। लेकिन जन्नत में एक सेकंड भी गम का नहीं होगा, एक सेकंड भी परेशानी का नहीं होगा, एक सेकंड भी एंजाइटी नहीं होगी, एक सेकंड भी बोरियत नहीं होगी। लिख लें ये, बोरियत नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि बोर हो जाएंगे ना, फिर तो कोई ख्वाहिश ही नहीं रहेगी। बोरियत नहीं होगी वो, क्योंकि आयशा तो रो दिया है, प्लेजेंट लाइफ है, जॉयफुल लाइफ है, खुशी की जिंदगी है, ऐश की जिंदगी है। तो जब इतनी ऐश की जिंदगी हो, तो फिर इंसान कैसे सोच सकता है कि जो है वो अच्छा, पता नहीं अगर मैं वहां पे बोर ना हो जाऊं। कभी ऐसे भी इंसान बोर हुआ है? इंसान तो इसकी तलाश में रहता है, काश वो वक्त आ जाए कि जब मुझे ऐसे ऐश मिले कि कोई फिक्र ना हो, सारी जिंदगी इसके पीछे भागता है। और जब उसको ये कहा गया कि ऐसा एक वक्त आएगा कि इंसान के लिए ये होगा, तो इतना ऐश होगा, तो फिर कहता है मैं बोर हो जाऊंगा फिर। अल्लाह अकबर। तो अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीन, और जिसके पलड़े या जिसका वजन हल्का होगा, फ़अम्मुहु हाविया, तो उसकी माँ हाविया होगी। पहली बात ये, बाज लोगों ने कहा कि ये क्या बात हुई, मीज़ान में आमाल तोले जाएंगे, ये कैसे हो सकता है, आमाल तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, फिर तोले कैसे जा सकते। तो उन्होंने इस बात का ही इनकार कर दिया। हालांकि हम जानते हैं अल्लाह ताला चाहे किसी चीज़ को भी तोल दे, किसी चीज़ को भी कोई शक्ल दे दे, और आज के दौर में तो हम ये बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कैसे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी कैसे उनका वजन हो सकता है। तो ये तो कोई बात ऐसी है नहीं कि जो समझ से बाहर हो। अल्लाह ताला इन आमाल को एक शेप दे देगा, एक जिस्म दे देगा। किसी की नमाज लागर फॉर्म में आएगी, इतनी कमजोर, इतनी ज्यादा आ तो गई लेकिन बहुत कमजोर है, बहुत नहीफ है, उसका क्या वजन होगा कि वो ऐसी है कि जो जो किसी को बचा नहीं सकती। इस तरह से है कि बहुत ही खुद बुरी हालत में है। जैसे एक ताबी के बारे में आता है, उन्होंने ख्वाब में देखा था ना, मालिक बिन दीनार उनका नाम है, उन्होंने ख्वाब में देखा, बहुत शराबी थे, बहुत ये थे, बहुत जिंदगी में उनके यानी अल्लाह की नाफरमानियां थी। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने एक दफा एक बच्ची देखी, तो दिल में ख्वाहिश हुई कि काश मेरी भी ऐसी बेटी हो। तो अपनी उन्होंने शादी की, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको एक बेटी दी जिसे बहुत मोहब्बत करते थे। और बेटी जब थोड़ी सी बड़ी हुई, तो एक दिन बैठे हुए थे, शराब पी रहे थे, बेटी ने उनका जो शराब का जाम था वो उसके ऊपर हाथ मारा और दूर फेंक दिया। और उसके बाद उन्होंने शराब छोड़ दी। फिर ऐसा हुआ कि बेटी की मौत वाकई हो गई और इसके बाद इनकी जिंदगी बहुत ही ज़्यादा, यानी एक जिंदगी के अंदर भूचाल आ गया और इतनी ज़्यादा शराब पीना शुरू गए कि मैं उस गम को भुला दूँ, क्योंकि उनकी बेटी बहुत लाडली थी उनकी। तो एक रात ख्वाब में क्या देखते हैं कि कयामत का मंजर है और इतनी लोग भागे जा रहे हैं और अफरा तफरी है और किसी को किसी का होश नहीं है। और ये भी देखते हैं तो ऐसा समा है, इतना बड़ा कोई हादसा है, कोई बहुत केओस का समा है। तो देखते हैं कि एक बड़ा सांप है जो मुंह खोले इनकी तरफ भाग रहा है। तो ये भागते हैं आगे, भागते हैं, और सांप है तो उनके पीछा करता जा रहा है और भागता जा रहा है उनके पीछे। तो देखते हैं आगे एक बुजुर्ग खड़े में है, सफेद दाढ़ी है और बहुत ही शक्ल से नेक लग रहे हैं। तो कहते हैं, आवाज देके उनको कहते हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो उन्होंने कहा, मैं कैसे तुम्हें बचा सकता हूं, मैं तो इतना कमजोर हूं। तो वो चढ़ते हैं एक जगह, एक पहाड़ के ऊपर, वहां पे देखते हैं मुख्तसरन के लोग परेशानी में, आग लगी हुई है, लोग जल रहे हैं, वहां से भागे नीचे आते हैं, सांप उनके पीछे आ रहा है। तो फिर उस आदमी से कहते हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो कहता है, मैं कैसे बचा सकता हूँ, मैं तो खुद इतना कमजोर हूँ। तो वो फिर कहता है कि आप ऐसा करें, उस जगह पे जाएं, उस पहाड़ पे, वहां पे शायद आपको कोई मिल जाए। तो वो वहां पर जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं और उनके अंदर उनकी वो छोटी सी नन्ही सी बेटी भी है जो भागी आती है उनके सामने और उनसे लिपट जाती है, और वो जो सांप है उसके आगे खड़ी हो जाती है। तो वो बच्ची से पूछते हैं कि ये क्या माजरा है। वो कहती है कि अप्पा, कयामत वाकई हो गई है और ये आपके गुनाह हैं। जो सांप है मुंह खोले आ रहा है, ये आपके गुनाह हैं जो आपका पीछा कर रहे हैं और आपको निगलने के लिए तैयार हैं। और वो जो बूढ़ा आदमी था वो आपका नेक अमल है, जो इतना कमजोर है कि वो आपको हेल्प नहीं कर सकता। और जो मैं दुनिया से चली गई, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए आजमाइश, और इसके ऊपर सब्र, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया। तो आंख खुलती और उसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाती। मालिक बिन दीनार का आप नाम सुनते हैं, फिर कैसे, किस तरह से वो दीन की खिदमत में लग गए और किस तरह उन्होंने बिल्कुल अपने आप को अपसाइड डाउन हो गई उनकी जिंदगी। सुभान अल्लाह। तो जब इंसान का नेक अमल कमजोर होगा ना, तो कयामत के दिन फिर ये गुना उसको निकल जाएंगे, फिर ये गुना वजनी हो जाएंगे, फिर खफत मवाजीन हो, फिर हल्के हो गए ना। ठीक थे तो सही उसकी नेकियां, लेकिन हल्की थी, उतनी नहीं थी जितनी की जरूरत थी। और वहां पर जब एक एक नेकी तुल रही है और एक एक गुना तुल रहा है, तो एक नेकी भी किसी की ज्यादा हो गई तो वो जन्नत में चला जाएगा, और सिर्फ एक गुना भी ज्यादा हो गया तो जहन्नुम में चला जाएगा। अब ऐसे में इंसान का क्या हाल हो रहा होगा जब मीजान कायम होगा। इसीलिए वो मरहला बहुत शदीद सख्त होगा, उस वक्त भी कोई किसी को याद नहीं रखेगा और इंसान के आमालनामे खोले जा रहे होंगे, ये काम किया तूने, ये काम किया, ये काम किया। अल्लाह अकबर। इंसान सोचेगा, मेरा फलां नेक अमल, अरे वो तो नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ गया। आदमी के सामने उसका आमालनामा खुला हुआ लाया जाएगा, वो पढ़ के गया, मैंने फला फला नेकियां भी की थी, वो इसमें दर्ज नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएगा, चूंकि तूने लोगों की गीबत की थी इसलिए वो तेरी नेकियां मिटा दी गई, वो उनको दे दी गई, वो नेकियां उड़ के उनके अमालनामे में चली जाएंगी। अल्लाह अकबर। तो इंसान उस दिन फिर अपनी कोई बुराई मिटा नहीं सकेगा, तौबा करके उसको इरेज नहीं कर सकेगा, जो लेकर आया वो सब तुल रही है। अगर उस दिन गुनाहों का पलड़ा वजनी हो गया और नेकियों का हल्का हो गया, तो उम्मुहु हाविया, फिर कोई बचा ना सकेगा, फिर उसकी माँ हाविया होगी। जैसे बच्चा माँ की तरफ भागता है ना हर चीज के लिए, उस तरह ये आग में चले जाएंगे, जहन्नुम की आग इनकी तरफ भागेगी और ये उसकी तरफ जाएंगे। और माँ ओरिजिन को भी कहते हैं या डेस्टिनेशन को भी कहते हैं, तो उसकी मंजिल हाविया होगी, ये जहन्नुम का नाम है। हाविया, हवा कहते हैं ना ऊपर से नीचे गिरने को, ये इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ बैठे हुए थे तो फरमाया, एक आवाज सुनते हो, ये तुमने आवाज सुनी है, ये उस पत्थर की आवाज है जो 70 साल पहले जहन्नुम में फेंका गया था, 70 साल बाद अब जहन्नुम की तह पे पहुंचा है। आप किसी हाई राइज बिल्डिंग से या किसी पहाड़ से, केटू से भी किसी को फेंक दें तो कितनी देर लगेगी, या आप चलें जहाज आसमान में ले जाएं और हजारों मील की बुलंदी पे होगा, वहां से कोई बंदा छलांग लगाता है, कितनी देर में पहुंच जाएगा जमीन पे, हजारों फुट से, हजारों मील से, चंद मिनट में बस। और जहन्नुम में कब पहुंचा? अब दुनिया में कोई जगह पे आप चले जाएं, घंटा भी नहीं लगेगा वहां से नीचे, ऊपर से नीचे आने में। 70 साल किसी इंसान की जिंदगी हो सकती है, 70 साल की, इतना टाइम, कितना ह्यूज पिट है वो, इतना गहरा गड़ा है वो। अच्छा, अब आप देखें गहरे गड़े को देख के जिसमें उसकी बेस ही नजर ना आए, मसलन अगर आपने कोई गहरा कुआं कभी देखा हो तो उसको देख के भी खौफ आता है, हालांकि उसके अंदर कोई आग नहीं होती, लेकिन जब गहराई को इंसान देखता है ना तो खौफ आता है। किसी पहाड़ पे खड़े हो जाए, नीचे देखें, या दो पहाड़ों के दरमियान कोई जगह हो, उस बहुत गहरी जगह है, आप ऊपर खड़े हैं, वो दो पहाड़ों के दरमियान में जो गैप होता है उसको ही देखें आप, उस आपको नीचे नजर ना आए ना, दिल दहल जाता है। कई लोगों को हाइट से एक फोबिया होता है। जहन्नुम ना सिर्फ ये कि आग से भरी भी है बल्कि गहरी भी है, इस कदर गहरी। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, वमा अदराका मा हिया, और क्या चीज बताए तुझको माँ क्या है, या वो या कहा जो एंड में है ना, ये एक आ है, जैसे गौशिया कौरिया। तो जब इस तरह से कहा जाता है तो इसमें आखिर में जो वो साउंड आती है ना, ये खौफ दिलाने के लिए, इंसान एक लंबा करके कहे हाँ हाय, नारुन हामिया, आग है भड़कती भी। आप देखें यहां पे पहले कहा गया वो जिंदगी जो आईशाते रौदिया थी, इसके मुकाबले में होना तो क्या चाहिए था, मिजरेबल लाइफ, वो तो एक जॉयफुल लाइफ है ना, इसके मुकाबले में मिजरेबल लाइफ है, ये नहीं कहा गया। वो जगह बता दी गई कि वो जगह कैसी होगी, अगर वो जगह ऐसी है तो फिर अंदाजा करें कि वहां पे रहने वालों का क्या हाल होगा, सिर्फ इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये मीजान जो कायम किया गया है इसी की बेस पे ये ठिकाने हैं, चाहे वो हाविया है और चाहे वो जन्नत है। तो इसी से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो आमाल तोले जाने हैं वो कितने ज़रूरी हैं, कितनी ज़्यादा उनके ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है, और कितना ज़्यादा इंसान को फोकस्ड ज़िंदगी में रहना है इंसान देखता रहे, क्योंकि एक एक अमल तुल रहा है, अगर राई के दाने के बराबर भी अमल तुल रहा है, अगर जूं के अंडे के बराबर अमल भी तुल रहा है, हमने जर्रे की बात पढ़ी थी सूरह जिलजाल में, और जर्रे की एक मुराद ये भी ली गई है, ये जो आप धूप आपके कमरे में अगर आ रही हो तो उस धूप के अंदर देखिए आप छोटे छोटे आपको जर्रे नजर आते हैं, छोटे छोटे, इतने टाइनी होते हैं कि बहुत ही हल्के से, अच्छा आप उनको ऐसे हाथ ही करेंगे तो वो इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं, वो उसको वो कहते हैं जर्रा है ये। आप अंदाजा कीजिए इसका क्या वजन है, आप सोचे कि ये तो वैसे धूप ना हो तो नजर भी नहीं आते, वो है जर्रा, उसके बराबर भी अगर अमल तुल जाना है तो हम किसी को बेलगाम कुछ कह देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, किसी भी किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, किसी के साथ ताना दे रहे हैं, किसी को साथ झूठ बोल रहे हैं, हम सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही है, क्या फर्क पड़ता है इससे। अल्लाह अकबर। इस तरह एक रिवायत में आता है, अशअत बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मोमिन की मौत के बाद उसकी रूह को ईमानदारों की रूह की तरफ ले जाया जाता है, और फरिश्ते उनसे कहते हैं अपने भाई की दिलजोई और तस्कीन करो, ये दुनिया के रंजो गम में मुब्तिला था, अब वो नेक रूहें उससे पूछती हैं फलां का क्या हाल है, वो कहता है वो तो मर चुका है, तुम्हारे पास नहीं आया, तो ये समझ लेते हैं और कहते हैं छोड़ो उसको, वो अपनी माँ हाविया में पहुंच गया, यानी हाविया यानी आग में चला गया। तो ये सख्त तेज हरारत वाली, टेम्परेचर वाली, बड़े शोले मारने वाली, झुलसा देने वाली आग है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी ये आग उस आग का 70th हिस्सा है, 70th, यानी वो आग इससे 69 टाइम ज्यादा है तेज, इतनी ज्यादा तेज है उसका अंदाजा ही हम लगा नहीं सकते, क्योंकि दुनिया की जितनी भी बड़ी आग हो, जितनी भी ज्यादा आग हो, वो आप कितनी भी भड़का लेंगे, उसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर आप कर लें तब भी वो एक टेम्परेचर है जिससे 69 टाइम ज्यादा वो आग है, दुनिया में तो वो हो ही नहीं सकती, और उसका धुआं भी इससे 70 गुना ज्यादा स्याह है, क्योंकि हदीस में आता है जहन्नुम की आग 1,000 साल तक जलाई गई तो वो सुर्ख हो गई, फिर 1,000 साल जलाई गई वो सफेद हो गई, फिर 1,000 साल तक जलाई गई तो वो स्याह हो गई, बस अब वो सख्त स्याह है और बिल्कुल अंधेरी है। और ये जो दुनिया की आग है ये तो 2 दफा हदीस में आता है, 2 दफा समंदर के पानी में बुझा के फिर भेजी गई है, अगर ये ना होता तो हम कभी इससे फायदा नहीं उठा सकते थे, सब कुछ जल जाना था, अगर जहन्नुम से निकाल के एक आदमी को दुनिया में रख दिया जाए एक जगह में तो सिर्फ उसकी सांस की भाप से ना सब जल जाएंगे, सब जल जाएंगे, उसकी सांस की भाप ऐसी होगी, अभी आग नहीं है, सिर्फ उसका सांस लेना इतना गर्म है, तो अंदाजा करें कि वो फिर आग कैसी होगी। इसीलिए इब्राहिम तैमी ने फरमाया मैंने अपने नफ्स को जन्नत का नमूना दिखाया कि मैं उसके अंदर खा रहा हूं पी रहा हूं, यानी वो ना इमेजिन किया करते थे इस तरह इमेजिनेशन में, अब देखिए हम भी कभी इमेजिन किया करें ना, अब वो उनकी इमेजिनेशंस भी कैसी थी, सुभान अल्लाह, सोचती हूँ कि शायद कभी भी दुनिया की इन झंझटों से निकलते ही नहीं कि हम कुछ इमेजिनेशन में भी लेकर हैं, कि जन्नत का नमूना दिखाया कि मैं उसके फल खा रहा हूँ और उसकी हूरों से बगलगीर हो रहा हूँ, फिर मैंने अपने नफ्स को जहन्नुम का नमूना दिखाया कि जकूम का फल खा रहा हूँ, वहां की पीप पी रहा हूं और उसकी जंजीरें और बेड़ियां पहन रहा हूं, फिर नफ्स को कहा अब तू क्या चाहता है, तो मेरा नफ्स कहने लगा मैं दुनिया में वापस जाना चाहता हूं ताकि नेक अमल कर लूं, तो फरमाते मैंने अपने नफ्स से कहा अभी तू अपनी ये आरजू पूरी कर ले, बस तू इस जहान में है अमले साले कर ले, इसी तरह उमर बिन अब्दुल अजीज एक दफा बैठे हुए थे अपने साथियों के साथ, और वो अहादीस बयान कर रहे थे, तो खामोश बैठे हुए। तो उन्होंने कहा, है अमीरुल मोमिनीन, आपको क्या हो गया, आप कुछ बोलते नहीं? फरमाया, मैं जन्नतियों के मुतल्लिक सोच रहा था कि वो किस तरह एक दूसरे से मुलाकात कर रहे होंगे, और दोजखियों के मुतल्लिक सोच रहा था कि वो किस तरह चीखों पुकार करके फरियाद कर रहे होंगे। फिर आप रो पड़े। अल्लाह अकबर। इसी वजह से वो लोग इसकी तैयारी में लगे रहते थे, इसी वजह से वो लोग इसके लिए फिक्र करने वाले थे, इसीलिए वो लोग जन्नत और जहन्नुम को सोचते थे, इसके बारे में वो परेशान रहते थे, इसके लिए वो प्लान करते थे कि जिंदगी कैसे गुजारें। तो यहां पर तो अगर आप सोचें कि ये दुनिया की आग का अगर कम से कम दर्जा हरारत जिसको नापा गया है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जहन्नुम की आग का दर्जा हरारत इससे 69 टाइम्स अगर बढ़ाया जाए तो 1,38,000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, सिर्फ कम से कम जो यहाँ का दर्जा हरारत है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया ना, ला तुबकी वला तदर, ना वो जान लेगी और ना ही जान छोड़ेगी, और ला यमूतु फीहा वला यहया, ना इसमें इंसान जिंदा होगा और ना ही वो उसकी मौत होगी, कि मौत भी वाकई नहीं होगी कि मर जाए तो खत्म हो जाए। इसी वजह से हज़रत रबी सारी सारी रात रात बिस्तर पे पहलू बदलते रहते थे, और कहते थे कि जहन्नुम की आग मुझे सोने नहीं देती। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अगर इंसान को इसका अंदाज़ा हो जाए तो वो शायद अपनी दुआओं में इस दुआ के अलावा उसको कुछ याद ही ना रहे, मैं कुछ और मांगूं कि अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से इतनी निजात दे देना, अल्लाह मुझे जहन्नुम से बचा लेना, क्योंकि जहन्नुम इतनी खौफनाक जगह है। मालिक बिन दीनार फरमाते थे, अगर मेरे पास कुछ मददगार होते तो मैं सारी दुनिया में उनको मुनादी के लिए भेजता कि वो ऐलान करें, लोगों जहन्नुम की आग से बचो, लोगों जहन्नुम की आग से बचो। अल्लाह अकबर। तो ये थी सूरतुल कारिया, अब इसकी तिलावत देखते हैं हम।
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار